16 चैप्टर व्याख्या के दृष्टिकोण - युग चक्रवादी। मानव समाज की रचना स्वयं मनुष्य करता है, इसकी अच्छी अथवा बुरी स्थिति के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है एवं समाज की वर्तमान कालिक स्थिति को वह अपनी इच्छा अनुसार एक विशेष दिशा की ओर उद्दिष्ट कर सकता है। यह एक अपेक्षाकृत आधुनिक परिकल्पना है। प्राचीन संस्कृतियों में प्रायः यह अवधारणा पाई जाती है कि मानव इतिहास एक पूर्व निर्धारित परियोजना के अनुसार अग्रसर होता जा रहा है, इसका लक्ष्य निश्चित है तथा इस लक्ष्य विशेष की प्राप्ति तक की विकास प्रक्रिया में आने वाली विशिष्ट अवस्थाएं भी पूर्वांकित हैं। इस प्रकार की अवधारणा में स्पष्टतः मानव इतिहास के विगत अतीत तथा अनागत भविष्य के विषय में एक परिकल्पनात्मक चित्र के निर्माण की अभिरुचि विद्यमान दिखाई पड़ती है। चिंतनशील मनुष्य के लिए भविष्य के प्रति चिंता तथा संपूर्ण मानव इतिहास की अंतिम नियति के संबंध में जिज्ञासा स्वाभाविक सी है। इस प्रकार के चिंतन की सामान्यतया दो कोटियां हो सकती है। पहला, मानव इतिहास निरंतर अकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है। यह सही अर्थों में विकासशील है तथा यह अनवरत रूपेण आर्थिक न्याय, अधिक सुविधा तथा आर्थिक सुख की प्राप्ति की ओर उन्मुख है। दूसरा, मानव इतिहास निरंतर पतन का इतिहास है, जिसमें मनुष्य अधिकाधिक दुख तथा नैराश्यपूर्ण स्थिति की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है और अंततः इसे विनष्ट हो जाना है। विभिन्न संस्कृतियों की चिंतना में ये दोनों ही अवधारणाएं पाई जाती हैं। प्राचीन मिस्री, बेबीलोनियन, भारतीय, यूनानी, रोमन सभ्यताओं में मानव इतिहास के विभिन्न युगों के संबंध में विचार किया गया तथा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित सभ्यताओं में अंतिम दो में इस समस्या पर विवेचन का एक दीर्घकालिक इतिहास रहा है। युग चक्रवादी चिंतन - भारतीय परंपरा। धर्म के दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय सभ्यता को ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन चिंतन धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। काल विभाजन के प्रसंग में युग चक्रवादी विचार इन तीनों में ही समान रूपेण स्वीकृत दिखाई पड़ता है, यद्यपि बौद्धों तथा जैनों ने इस सिद्धांत में कुछ संशोधनों तथा नवीनताओं का भी अनुप्रवेश किया है। ब्राह्मण विचारधारा में युग सिद्धांत का प्रारंभ अत्यंत प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ता है। समय समय पर संसार की उत्पत्ति तथा विनाश की परिकल्पना अत्यंत प्राचीन है तथा अथर्ववेद में इसका स्पष्ट अस्तित्व सिद्ध होता है, जो स्वभावतः युग सिद्धांत के साथ संबद्ध हो गई। मानव इतिहास की चार विशिष्ट अवस्थाएं हैं जो चार युगों के नाम से अभिहित होती हैं: कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलि। ब्राह्मण साहित्य में ही ये चारों नाम ज्ञात हैं, जहां ये जुए में फेंके जाने वाले पासे के चार पक्षों के परिचायक हैं। कृत चार बिंदुओं से अंकित पक्ष है तथा यह सर्वाधिक भाग्यशाली एवं उत्तम प्रक्षेपण है। त्रेता में तीन बिंदुओं का अंकन है, द्वापर में दो तथा कलि में एक, किंतु ऐत्रेय ब्राह्मण में ही, जैसे कि ग्रंथ के टीकाकार की मान्यता है, ये चारों नाम युगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार ये चार युग पूर्वानु प्राक्रम में हैं, जिनमें से प्रत्येक का गुणात्मक स्वरूप इसमें निहित धर्म की अधिकता अथवा न्यूनता द्वारा निर्धारित होता है। धर्म को एक गाय के रूप में उपकल्पित किया गया, जो प्रथम अथवा कृत युग में अपने चारों पैरों पर खड़ी रहती है, किंतु प्रत्येक अनुवर्ती युग में उसके एक पैर का ह्रास होता रहता है और अंततः कलि युग में वह केवल एक पैर पर खड़ी रहती है। कृत युग मानव इतिहास में स्वर्णिम युग रहा है, जिसमें मानव सभी रूपों में संपन्न, सुखी तथा पारस्परिक सौहार्द्र से संयुक्त था। कलयुग इसके ठीक विपरीत अवस्था का परिचायक है, जिसमें समाज पारस्परिक द्वेष, वैमनस्य, कलह इत्यादि से संत्रस्त रहेगा। किंतु यह केवल मानव समाज का समष्टिगत चित्र है। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, प्रत्येक युग में उसकी विमुक्ति की संभावनाएं विद्यमान होती हैं, और यही नहीं, प्रत्येक अनुवर्ती युग में मोक्ष प्राप्ति के साधन अपेक्षाकृत सरलतर उपकल्पित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ कृत युग में आत्यंतिक सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन एवं दीर्घकालिक तप साधना करनी होती थी, कलयुग में केवल ईश्वर के नामोच्चारण द्वारा इसे संभव बताया गया है। इस प्रकार व्यक्ति के लिए धर्म की निरंतर क्षीय मान्यता का यह सिद्धांत किसी प्रकार के नैराश्य को जन्म देने वाला नहीं होना चाहिए। ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युग अथवा महायुग की रचना करते हैं। एक महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। कल्प सृष्टि के उद्भव से लेकर प्रलय अर्थात सृष्टि के विनाश तक का संपूर्ण समय होता है। बौद्ध भी इन चार युगों में विश्वास करते थे और उन्होंने इन्हें यही नाम भी प्रदान किए, किंतु इन युगों के की उनके द्वारा की गई व्यवस्था थोड़ी भिन्न है। चार युगों को एक साथ रखने के स्थान पर ये आठ युगों की एक इकाई मानते हैं, जिसे अंतरकप अर्थात अंतरकल्प कहते हैं। ये युग कलि से प्रारंभ होते हैं एवं कृत तक जाते हैं, और तब पश्चात उल्टे क्रम में चलते हुए वे पुनः कलयुग तक आते हैं। 20 अंतरकप मिलकर एक असंख्य कप अर्थात असंख्य कल्प का निर्माण करते हैं, और चार असंख्य कप एक कल्प बनाते हैं। जैन अवधारणा में काल की कल्पना 12 अरों वाले एक चक्र के रूप में की गई है, जो दो अर्थों में विभक्त है। ऊपर की ओर प्रवर्तमान अर्धभाग को उत्सर्पणी तथा नीचे की ओर प्रवर्तमान अर्थभाग को अवसर्पणी की संज्ञा प्रदान की गई है। एक निश्चित संख्या में उपसर्पणीनिया तथा अवसर्पणीनिया एक दूसरे के पश्चात आती और जाती रहती हैं। इस प्रकार युगों का सिद्धांत अवतारवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूपेण संलग्न है, जिसके इतिहास निहितार्थों का विस्तारपूर्ण विवेचन भारतीय इतिहास दर्शन से संबद्ध अध्याय किया जा चुका है। यूनानी रोमन चिंतन, धातु युगों की कल्पना। यूनानी तथा रोमन वासियों दोनों ने इस समस्या में विशेष अभिरुचि दिखाई है, तथा उनमें इस विषय पर एक दीर्घकालिक परिसंवाद की परंपरा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विविध सिद्धांतों का उद्भव हुआ। प्रत्येक सिद्धांत इन दो में से किसी एक कोटि के अंतर्गत आता है। पहला, मनुष्य ने अपनी पूर्ववर्ती अवस्था से ऊपर उठकर विकास किया है। दूसरा, उसका पतन हुआ है। यद्यपि इन दोनों सिद्धांतों का ही महत्व रहा है, तथापि दूसरा सिद्धांत सभी समयों में प्रमुख विचार के रूप में मान्य रहा है। यूनानी रोमन चिंतना के अंतर्गत युग सिद्धांत के प्रसंग में हेसियोड का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथा इस समस्या पर विचार करने वाले सभी प्रवर्ती लेखक उससे प्रभावित रहे हैं। उसने चार युगों की कल्पना की है, तथा इन युगों के नाम चार धातुओं के ऊपर दिए गए हैं। पहला युग स्वर्ण युग है। इस युग के मनुष्य उस समय रह रहे थे जिस समय स्वर्ग में क्रोनोस का शासन चल रहा था। स्वयं मनुष्य देवताओं के समान कर्म करते थे। पृथ्वी स्वयं में उन्हें सभी श्रेयस्कर वस्तुएं प्रदान करती थी। मनुष्य की इस नस्ल की समाप्ति के पश्चात रजत युग के मनुष्य आए। पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा ये कई दृष्टियों से हीनतर स्थिति में थे, और अंततः अपनी मूर्खता के कारण वे विनाश को प्राप्त हुए। ये परस्पर मार काट में लगे रहते थे, तथा देवताओं की पूजा भी नहीं करते थे, जो कि मनुष्यों का कर्तव्य है। इसके पश्चात कांस्य युग आया। इस युग के मनुष्य शक्तिशाली किंतु दया भाव से सर्वथा शून्य थे। उनके घर का शस्त्र कांस्य निर्मित होते थे, क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये सभी पारस्परिक कलह एवं मार काट से विनष्ट हुए। इसके पश्चात लौह युग आता है। प्रारंभ में वीर पुरुष हुए भी, जो पूर्ववर्ती युग के मनुष्यों की तुलना में अधिक अच्छे तथा न्यायपूर्ण थे। ट्राय तथा थेबिज के युद्धों में भाग लेने वाले पूर्वकालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी प्रकार के वीर पुरुष थे। वर्तमान कालिक लौह युग में श्रम तथा दुख से विमुक्ति नहीं है तथा देवता हमारे ऊपर और भार डालेंगे। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि हेसियोड द्वारा प्रस्तुत युगों के विवरण में बीच में वीर पुरुषों से संबद्ध काल के अस्तित्व के कारण मानव इतिहास के निरंतर पतन की परिकल्पना में अवरोध आता है। साथ ही इसमें उस मान्यता का भी विरोध दिखाई पड़ता है कि इनमें से प्रत्येक युग का प्रतिनिधित्व एक विशिष्ट प्रकार की मनुष्य जाति द्वारा होता है। कालांतर में युगों का यह सिद्धांत समय के चक्रात्मक विकास के सिद्धांत के साथ जुट गया। युगों के चक्रात्मक विकास का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित था कि जैसे रात और दिन का चंद्रमा के वृद्धिमान तथा क्षीयमान पक्ष का अथवा ऋतुओं में एक के पश्चात दूसरे का अनुमान होता रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भी परिवर्तन की इसी प्रकार की चक्रात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। बेबीलोनिया की सभ्यता में विश्व वर्ष, जिसे रोमवासी मैग्नस एनस नाम से पुकारते थे, का यह सिद्धांत पहले से ही ज्ञात था। यूनानी सभ्यता में सर्वप्रथम हेरिक्लिस्टस के चिंतन में प्रकट होता है। बाद के दार्शनिकों ने इस पर विस्तारपूर्ण विवेचन किया। इस विचारधारा का पूर्व काल से जनमानस में प्रचलित युग सिद्धांत के साथ संलग्न होना स्वाभाविक था। यूनानी चिंतन में इस समस्या पर वाद विवाद अत्यंत प्राचीन काल से दिखाई पड़ता है। इस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा प्लेटो के विभिन्न परिसंवादों में प्राप्त होती है, उदाहरणार्थ टीमेयस रिपब्लिक। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मानव अनुभव का मापन दो विश्व वर्षों द्वारा होता है। प्रथम में विश्व आगे की ओर बढ़ता है, दूसरा में यह पीछे की ओर चलते हुए पुनः अपने प्रारंभ बिंदु पर पहुंचता है। प्रत्येक विश्व वर्ष इस प्रकार उन दो पक्षों में से एक होता है जिनमें कि मानव जाति का इतिहास विभक्त है तथा युगों का एक के पश्चात दूसरे के आने का यह क्रम ब्रह्मांड की स्थिति तक चलता रहेगा। जो सिद्धांत संपूर्ण पर लागू होता है वही इसके प्रत्येक तथा सभी खंडों पर भी लागू होगा। मनुष्य के युग ब्रह्मांड की कल्पना इस चक्रीय विकास प्रक्रिया से घनिष्ठ रूपेण संबद्ध है। सुदूर अतीत का स्वर्णिम युग एक समय पुनः लौटेगा। इस प्रकार भविष्य की आशामय परिकल्पना सुखद अतीत के विगत हो चुकने के शोक को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही यह विश्वास भी प्रचलित था कि हम में से प्रत्येक उस आगामी स्वर्ण युग में एक बार पुनः जीवन धारण करेगा। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहस्यवादिता के पुनर्जीवन ने यूनानी रोमी युग चक्रवादी विचारधारा में एक नया आयाम जोड़ा। इस विचारधारा के अंतर्गत विविध ऐसी पुस्तकों का प्रणयन होता दिखाई पड़ता है जिनमें आगामी समय के संबंध में भविष्योक्तियां की गई हैं। इन परिकल्पनाओं तथा भविष्योक्तियों में तर्क बुद्धि के स्थान पर भावना तथा श्रद्धा की अधिक अभ्यर्थना है। लेखक का अपने पाठकों से यह आग्रह मिलता है कि वर्तमान युग प्रायः अपनी समाप्ति पर है तथा अनति दर भविष्य में एक महान परिवर्तन घटित होने वाला है। वह इस बात को एक मत अथवा सिद्धांत के रूप में नहीं कहता जिस पर कोई आलोचनापूर्ण चर्चा की जा सकती हो। वह इसे एक देव प्रेरित भविष्य कथन के रूप में प्रस्तुत करता है जिसकी सत्यता वर्तमान कालिक घटनाओं में पहले से ही देखी जा सकती है और जिसके विषय में किसी प्रकार की शंका का कोई स्थान नहीं है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, यह सिद्धांत ईसाई धर्म की प्रमुख मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यूनानी रोमी युग चक्रवाद का सिद्धांत समय समय पर कुछ संशोधनों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए दिखाई पड़ता है। ईसाई परंपरा में युग सिद्धांत ईसाई धर्म को यह परंपरा उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुई, किंतु ईसाई चिंतन में युग सिद्धांत का प्रतिपादन भिन्न रूप में हुआ। इससे पूर्व की कृतियों में स्वर्णिम युग को सुदूर अतीत में रखा गया था तथा मानव इतिहास के परवर्ती युगों को पतन के तथा विनाशों उन्मुख इतिहास के रूप में उपकल्पित किया गया था, किंतु ईसाई धर्म में जीसस के आगमन को नवीन आशा तथा सुखद भविष्य के सूचक के रूप में समझा गया। इसके पहले ही इजरायल के पैगंबरों ने निकट भविष्य में मसीहा के जन्म की भविष्योक्ति द्वारा इस प्रकार के आशाजनक विचार को प्रचारित कर रखा था, जो कि पृथ्वी पर विशुद्ध धर्म, शांति तथा सुख की संस्थापना करने वाला होगा। ईसाई धर्म ने इस सूत्र को पकड़ा और विश्व के इतिहास को विकास के इतिहास, जो यदि निरंतर विकास नहीं तो कम से कम समय समय पर होने वाले विकास का निरंतर प्रदर्शित करेगा के रूप में उपकल्पित किया। सेंट अगस्टीन पहला व्यक्ति था जिसने मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। उसके बाद आने वाले सभी धर्मशास्त्री किसी न किसी रूप में अगस्टीन की युग व्यवस्था से प्रभावित रहे हैं। स्पेनवासी पादरी पालस ओरोसियस सेंट अगस्टीन का बहुत बड़ा प्रशंसक था तथा अपनी पुस्तक हिस्टोरिया को उसने सेंट अगस्टीन के प्रति समर्पित किया है। उसने अपनी पुस्तक को 7 खंडों में विभक्त किया है, जो मानव इतिहास के 7 युगों के परिचायक हैं। रोम के इतिहास का उसके ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा था। रोम की स्थापना, गाल जाति द्वारा रोम की विजय, अलेक्जेंडर की मृत्यु, कार्थेज का प्रभाव, दास युद्ध, सीजर अगस्टस का शासनकाल, जिसके साथ वह जीसस के जन्म को भी संबद्ध करता है, वे स्मरणीय तथा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उस के युगों की सीमा रचना करती हैं। मध्ययुगीन ईसाई लेखकों ने युग सिद्धांत पर पर्याप्त चर्चा की। इसके पहले ही इतिहास की विकास प्रक्रिया को एक पूर्व स्थित दैवी परियोजना के अनुसार अग्रसर होती हुई उपकल्पित किया गया था। ईश्वर की इच्छा के रूप में इतिहास स्वयं ही अपने को व्यवस्थित करता है एवं अपने लक्ष्य की ओर प्रवर्तमान रहता है, जिसमें मनुष्य द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुप्रवेश संभव नहीं है। यहाँ तक कि वे व्यक्ति भी जो यह सोचते हैं कि वे इस दैवी परियोजना के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वस्तुतः अनजाने में इसमें सहायक भूमिका ही निभाते हैं। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह इस परियोजना को आगे बढ़ाने में सहायता पहुँचावे। यदि वह इसके विरुद्ध कार्य करता है तो भी वह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता, केवल अपने जीवन को निरर्थक बनाता है तथा निराशा एवं संताप को पहुंचता है। इस कारण मध्ययुगीन इतिहास लेखन का मुख्य कार्य इस दैवी परियोजना को खोजना तथा इसके प्रयोजन को ठीक ठीक समझना था। इस परियोजना का विकास समय के अंतर्गत ही हुआ था और इस कारण इस विकास में कुछ विशिष्ट अवस्थाओं का होना स्वाभाविक था। इस तथ्य विशेष पर चिंतन ने किसी महत्वपूर्ण घटना से प्रारंभ होने वाले ऐतिहासिक युगों में विश्वास को उभारा और तत्परिणाम स्वरूप विभिन्न ऐतिहासिक युगों की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। मध्ययुगीन युग विभाजन के एक प्रतिनिधि सिद्धांत के रूप में फ्लोरिस के जोएकिम 12वीं शताब्दी के सिद्धांत को लिया जा सकता है। उसने इतिहास को 3 युगों में विभक्त किया, पिता अथवा ईश्वर का शासनकाल अर्थात पूर्व ईसाई युग, पुत्र का शासनकाल अर्थात ईसाई युग तथा पवित्र आत्मा का शासनकाल अर्थात वह युग जो भविष्य में आने वाला है। किसी भावी युग के प्रति उद्धरण मध्ययुगीन इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशिष्टता है। इस दैवी परियोजना की सत्यता का प्रमाण क्या है, यह पूछने पर इन लेखकों का उत्तर यह है कि इसके विषय में उन्हें श्रुति प्रकाश से ज्ञात हुआ है, और इस श्रुति प्रकाश में जहां एक ओर यह ज्ञात होता है कि ईश्वर ने अतीत में क्या किया है, वहीं दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि वह भविष्य में क्या करने वाला है। इतिहास का लक्ष्य इस प्रकार ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित और श्रुति प्रकाश के विकास के माध्यम से मनुष्य को पूर्व ज्ञात है। युग सिद्धांत, आधुनिक विश्लेषण, विको एवं हर्डर के विचार। 17वीं शताब्दी के युग सिद्धांत पर उत्साह के साथ विचार प्रारंभ हुआ और उस समय में हुए बोसुए से लेकर आधुनिक युग में स्पेंगलर तथा टाइनबी तक इसकी एक अविच्छिन्न परंपरा दिखाई पड़ती है। अपनी पुस्तक डिस्कूर्स सुरलिस्तवार यूनिवर्सेल 1681 में बोसुए सेंट अगस्टीन द्वारा प्रतिपादित 7 युगों को स्वीकार करता है। उसके अनुसार प्रथम युग का समय विस्तार आदम से नोआ तक है तथा यह सृष्टि के उद्भव तथा प्रारंभिक काल का विशेषक है। दूसरे युग जो नोआ से लेकर अब्राहम के काल को सन्निविष्ट करता है में जल प्लावन की घटना घटी तथा मनुष्य प्रथम बार दंडित हुआ एवं इसी समय से रक्त रंजित विजयों के युग का प्रारंभ हुआ। अब्राहम से लेकर मोजेज तक के काल को सन्निविष्ट करने वाले तीसरे युग में ओल्ड टेस्टामेंट का प्रारंभ हुआ। मोजेज से लेकर जेरूसलम में सोलोमान द्वारा मंदिर के निर्माण की घटना तक का काल चौथे युग को उपलक्षित करता है। पांचवा युग बेबीलोन की दास्ता तक चलता है। छठा साइरस से जीसस तक चलता है और सातवां जीसस के जन्म से लेकर हमारे अपने समय तक आता है। बोसुए के इस काल विभाजन से स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि अतीत की ओर उन्मुख थी और उसने भविष्य में स्थित उस युग विशेष की परिकल्पना नहीं प्रस्तुत की जिसमें सभी लोग सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, जबकि क्राइस्ट द्वारा सभी शत्रु पराभूत हो जाएंगे और जब लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकेंगे। बिक्को 18वीं शताब्दी में हुआ। वह स्वयं एक कुशल तथा प्रशिक्षित इतिहासकार था तथा उसने ऐतिहासिक विधि के सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया। बिक्को के अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रहते हुए मनुष्य अपनी भाषा, प्रथाओं, विधि तथा प्रशासन इत्यादि से संबद्ध संस्थाओं की रचना करता है। इस प्रकार उसके अनुसार इतिहास मानव समाजों तथा इनकी संस्थाओं के उद्भव तथा विकास की कथा है। यहाँ हम पहली बार इतिहास की वस्तु सामग्री के विषय में एक संपूर्णतः आधुनिक विचार का दर्शन करते हैं। मनुष्य के एकांतिक कार्य व्यापारों तथा उनको परस्पर सुग्रथित करने वाली दैवी परियोजना में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, जैसा कि मध्ययुग में समझा जाता था। इतिहास की योजना सर्वथा मानवीय योजना है, किंतु वह किसी अपूर्ण इच्छा के रूप में पूर्व स्थित नहीं है जो कि अपने कर्मिक पूर्णत्व की ओर परिवर्तित हो रही है। मानव समाज की संपूर्ण संरचना स्वयं मनुष्य द्वारा रची गई है तथा यह मानव मस्तिष्क द्वारा पूर्णतः परिज्ञेय है। बिक्को ने विधि तथा भाषा इत्यादि विषयों के इतिहास का स्वयं गंभीर शोधपूर्ण अध्ययन किया था और उसके विचार इस अध्ययन पर आधारित थे। उसने इन शोधों को उसी प्रकार का निश्चित ज्ञान प्रदान करने में सक्षम पाया जिस प्रकार के निश्चित ज्ञान को डेकार्त ने भौतिक शास्त्रीय तथा गणितीय शोध कार्यों से संबद्ध किया था। इस तरह का ज्ञान किस प्रकार उद्भूत हुआ है इसकी चर्चा करते हुए उसने कहा है कि इतिहासकार अपने मस्तिष्क में उस प्रक्रिया की पुनर्रचना कर सकता है जिसमें अतीतकालिक मनुष्यों ने इसके विभिन्न तत्वों का निर्माण किया था। इतिहासकार के मस्तिष्क तथा इसके द्वारा अध्येय विषय वस्तु के बीच एक प्रकार का पूर्व स्थित सामरस्य होता है। सुदूर अतीत के कालों के इतिहास में बिक्को की विशेष रुचि थी और इस प्रसंग में उसने कुछ नियमों को बनाने का प्रयास किया। उसने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास के कुछ कालों का एक समान स्वभाव था जिनका अन्य कालों में पुनर्प्रकाशन हुआ और इस प्रकार दो भिन्न युगों का समान स्वभाव संभव है। उदाहरण के लिए उसने कहा कि यूनानी इतिहास के होमर काल तथा यूरोपीय मध्य युग में समान सादृश्य दिखाई पड़ता है और इन दोनों युगों को ही उसने हीरोइक युग की संज्ञा प्रदान की। इन दोनों युगों में कुछ समान तत्व देखे जा सकते हैं। योद्धा कुलीन तंत्र के हाथ में प्रशासन का होना, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, व्यक्ति के शक्ति तथा स्वामी भक्ति के विचार पर आधारित नैतिकता, गाथा का इत्यादि आगे आगे उसने यह कहा कि ये समान युग उसी क्रम में इतिहास में घटित हुए हैं। प्रत्येक हीरोइक युग के पश्चात क्लासिक युग आता है, जिसमें कल्पना के स्थान पर विवेक की, गाथा काव्य के ऊपर गद्य साहित्य की, कृषि के ऊपर उद्योग की प्रभुता होती है तथा नैतिकता का आधार युद्ध न होकर शांति होता है। इस युग के पश्चात एक नए प्रकार की बर्बरता में पतन का युग आता है। यह नए प्रकार की बर्बरता होती है जिसमें विचार अथवा विवेक तो होता है किंतु इसकी सृजनात्मक शक्ति छिन्न हो चुकी होती है। बीको तथा इस चक्रीय विकास को सुनिश्चित कालों के चक्र में इतिहास का पुनरावर्तन मात्र नहीं मानता, यह एक वृत्त न होकर सर्पिल आकार का है, क्योंकि इतिहास कभी भी अपने को दोहराता नहीं, अपितु प्रत्येक नए युग में वह अतीतकालिक घटनाओं द्वारा विशिष्टीकृत रूप में पदार्पण करता है। चूँकि इतिहास सदैव ही सृजनात्मक नवीनताओं को अंतर्विष्ट करता है, अतः चक्रीय विषय हमें भविष्योक्ति की अनुमति नहीं प्रदान करता। यहाँ बीको के विचार का प्राचीन कालीन यूनानी रोमन चिंतन में युग चक्रवाद संबंधी विचार से विभेद स्पष्ट है। उसके विचार में हमें यह सिद्धांत विशेष प्राप्त होता है, जिसके अनुसार इतिहास भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जर्मन विचारक हर्डर की मानव जाति के दार्शनिक इतिहास के संबंध में विचार शीर्षक पुस्तक 1784 तथा 1791 के बीच में 4 जिल्दों में प्रकाशित हुई। हर्डर ने युग चक्रवाद पर मनुष्य के जीवन से संबंधित अवस्थाओं की समवृत्तिता के आधार पर विचार किया है। उसके अनुसार मानव जीवन भौतिक विश्व में अपने परिवेश के साथ घनिष्ठ रूपेण संबद्ध है। इस भौतिक ब्रह्मांड का समान स्वरूप एक जीविका है, जो इस प्रकार नियोजित है कि यह अपने अंदर उच्च स्तर के जीवी को विकसित करता रहता है। भौतिक ब्रह्मांड एक योनि के समान है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में सौर मंडल का जन्म होता है। पुनः सौर मंडल वह योनि है जिसमें पृथ्वी का जन्म होता है, जो कि अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा मनुष्य का उपयुक्त कार्य क्षेत्र बनती है। पृथ्वी की इस भौतिक संरचना के अंतर्गत विशिष्ट खनिजीय निर्मितियों विशिष्ट भौगोलिक जीवी प्रायद्वीपी इत्यादि का जन्म होता है। पृथ्वी पर फिर जीवन का प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले वनस्पति जीवन का आविर्भाव होता है। पशु जीवन वनस्पतिक जीवन का ही और विकसित रूप है, और फिर इसका और अधिक विकसित रूप मानव जीवन के आविर्भाव में देखा जा सकता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य वस्तुतः पशु का परिष्कृत रूप है, जैसे पशु वनस्पति का परिष्कृत रूप। इस प्रकार मानव स्वभाव केवल 2 चरण आगे बढ़कर वनस्पतिक स्वभाव को परिष्कार करता है, परिष्कार मात्र है। हर्डर प्रकृति की विकास प्रक्रिया को किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख मानता है, जिसमें विकास की प्रत्येक अवस्था प्रकृति द्वारा इस प्रकार नियोजित है ताकि वह आगामी अवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सके। कोई भी अवस्था स्वयं में लक्ष्य नहीं है, किंतु मनुष्य के आविर्भाव में यह प्रक्रिया अपनी परिणति को पहुँचती है। मनुष्य को उत्पन्न करने में प्रकृति का प्रयोजन एक तर्क बुद्धि प्रधान प्राणी को उत्पन्न करना है, और इसी कारण मानव स्वभाव अपना विकास आध्यात्मिक शक्तियों की एक व्यवस्था के रूप में करता है, जिसका पूर्ण विकास भविष्य में स्थित होता है। इस प्रकार मनुष्य 2 विश्वों के बीच कड़ी के रूप में होता है, भौतिक जगत में जगत जिसमें से वह स्वयं निकला है, तथा आध्यात्मिक जगत जो उसके द्वारा वस्तुतः अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में वह शाश्वत रूपेण विद्यमान होता है, किंतु पृथ्वी पर आत्मसिद्धि करता है। एक प्राकृतिक प्रणाली के रूप में मानव जाति कई नस्लों में विभाजित है, प्रत्येक नस्ल अपने भौगोलिक परिवेश के साथ घनिष्ठ रूपेण संबद्ध होता है और इस भौगोलिक परिवेश से प्रभावित उसकी अपनी विशिष्ट मौलिक शारीरिक तथा मानसिक विशिष्टताएं होती हैं। किंतु प्रत्येक नस्ल मानव जाति के एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अपने विशिष्ट चिरस्थायी लक्षण होते हैं। प्रत्येक नस्ल सुख तथा जीवन के आदर्श के विषय में अपने विचार रखता है। विभिन्न नस्लों में विभक्त मानव जाति भी एक योनि के समान है जिसमें ऐतिहासिक जीवी का जन्म होता है जो कि मानवीय जीवी का एक उच्चतर प्रकार है। हल्डर के मतानुसार यूरोप प्रकृति का वह प्रिय केंद्र है जिसमें इसकी विशिष्ट भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी विशिष्टताओं के कारण ऐतिहासिक जीवन का उद्भव होता है और इस कारण केवल यूरोप में ही मानव जीवन को विशुद्ध अर्थों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। चीन, अमेरिका तथा भारत में कोई वास्तविक ऐतिहासिक प्रगति नहीं हुई है, अपितु इसके विपरीत यहाँ एक अपरिवर्तनशील सभ्यता रही है। इस प्रकार यूरोप मानव जाति का एक विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य पशुओं में विशेष स्थान रखता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कई महत्वपूर्ण विचारों से युक्त होने पर भी हर्डर के चिंतन में कई त्रुटियां हैं। वह केवल समवृत्तताओं के आधार पर बिना उनकी परीक्षा किए विविध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उसने अपने विचारों का समीक्षात्मक परीक्षण नहीं किया। यह भी सत्य नहीं है कि केवल यूरोप ही ऐसा प्रदेश है जिसका अपना इतिहास था। यद्यपि यह सत्य है कि उसके अपने समय में यूरोपियों को केवल इसी प्रदेश का विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान व्याप्त था। इसी प्रकार नस्लों के संबंध में भी उसके विचार को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्पेंगलर एवं टाइनबी की युग चक्रवादी परिकल्पना। ओसवाल्ड स्पेंगलर तथा आर्नोल्ड टाइनबी दो अन्य आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। स्पेंगलर 1880 से 1936 की प्रसिद्ध कृति पश्चिमी का पतन है जो एक तकनीकी शैली में लिखी होने तथा कठिनाई से बुद्धिग्राह्य होने पर भी प्रारंभ से ही अत्यंत लोकप्रिय रही है। स्पेंगलर के चिंतन पर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसकी पुस्तक की प्रथम जिल्द 1918 में प्रकाशित हुई और लगभग 4 साल बाद इसकी दूसरी जिल्द पर्याप्त बड़े आकार में प्रकाशित हुई। उसने स्पष्ट रूप से इस तथ्य विशेष का दर्शन किया कि सभ्यता के आशावान पूर्ण नहीं हुए थे तथा उसका अपना युग प्रगति तथा विकास का युग न होकर बहुमुखी अवनति तथा पतन का युग था। उसने अपने ऊपर नीत्से के विचारों का प्रभाव स्वीकार किया है। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास उन विविध पृथक पृथक इकाइयों का अनुक्रम है जिन्हें कि हम संस्कृति कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है जिसकी अभिव्यक्ति उसके विकास क्रम के विभिन्न पक्षों में विस्तार से होती है। साथ ही प्रत्येक संस्कृति की एक निश्चित आयु होती है। व्यक्ति के समान संस्कृति भी विकास तथा परिपक्वता का भोग करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होती है। स्पेंगलर ने इस बात पर बल दिया कि हमें सत्य का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। कई रूपों में वह एक प्रकार की निराशावादिता में आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ता है, जबकि कुछ अन्य लोग नव स्थापित राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की सफलता में विचार में विश्वास प्रकट कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि अब युद्ध नहीं होंगे। उसने इन सभी प्रयासों की विफलता की पूर्व घोषणा की। उसके अनुसार प्रत्येक संस्कृति एक जैव इकाई के समान है और उसमें भी तद्रूप जीवन चक्र देखे जा सकते हैं। प्रत्येक संस्कृति का प्रारंभ प्रारंभिक समाजों की बर्बरता से होता है। कालांतर में इसके अंतर्गत विविध राजनीतिक संस्थाओं, कला तथा विज्ञान इत्यादि का विकास होता है जो प्रारंभ में समान होता है किंतु अनुवर्ती युग में विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। पुनः संस्कृति का पतनशील युग आता है जिसमें सर्वत्र विकृति दिखाई पड़ने लगती है। संस्कृति की सृजनशीलता समाप्त हो चुकी होती है और अंतोतगतवा यह संस्कृति विनष्ट हो जाती है। न केवल इन युगों के चक्र निश्चित हैं अपितु प्रत्येक युग चक्र द्वारा लिया जाने वाला समय भी निश्चित है। इस प्रकार यदि हम यह जान सके कि हम अपनी संस्कृति के चक्र में किस बिंदु विशेष पर खड़े हैं तो भावी युगों के विषय में भी एकदम ठीक ठीक बता सकते हैं। टाइनबी की 10 जिल्दों में लिखी प्रसिद्ध पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री का प्रकाशन 1934 में प्रारंभ हुआ एवं 20 वर्षों में समाप्त हुआ। टाइनबी का मुख्य प्रयोजन सार्वभौमिक इतिहास का लेखन है और इस दृष्टिकोण से उनका लक्ष्य स्पेंगलर के लक्ष्य से सादृश्य रखता दिखाई पड़ता है, किंतु टाइनबी ने अपने इतिहास विषयक निष्कर्षों को समीक्षापूर्ण तथा वस्तुनिष्ठात्मक पर्यवेक्षण पर आधारित होने का दावा किया है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री का पाठक टाइनबी के इतिहास विषयक अध्ययन की व्यापकता तथा ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में उसके विशद ज्ञान से हतप्रभ सा हो जाता है और आदंत उनमें अपने सिद्धांतों के समर्थन में ऐतिहासिक तथ्यों की साक्षिता प्रदान करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। किंतु टाइनबी के आलोचकों का कहना है कि उनमें इतिहासकार की निर्वैयक्तिकता का अभाव है एवं वे अपने सिद्धांतों के मुँह में इस प्रकार बंधे दिखाई पड़ते हैं कि प्रायः ऐतिहासिक तथ्यों की सम्यक व्याख्या उनसे नहीं हो पाती। पीटर गेल, जो टाइनबी का प्रमुख आलोचक है तथा उनकी कठोर आलोचना के कारण जिसे टाइनबी विरोधी की उपाधि मिल चुकी है, का कहना है कि टाइनबी के इतिहास ज्ञान में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता, किंतु वे एक धर्मदूत हैं, इतिहासकार नहीं। इस प्रकार विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों की उनकी विस्तारपूर्ण व्याख्याएं भी प्रायः उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित नहीं होती और उनका कहना है कि अपने सिद्धांतों से संगत बनाने के लिए टाइनबी ने ऐतिहासिक तथ्यों को मनमाने ढंग से विकृत करके प्रस्तुत किया है। टाइनबी की पुस्तक 20 वर्षों से ऊपर के दीर्घकाल में संपन्न हुई और इतने लंबे समय को अंतर्भूत करने वाले टाइनबी के चिंतन की प्रारंभिक तथा परवर्ती अवस्थाओं में पूर्ण समंजसता तथा विचार समानता नहीं दिखाई पड़ती। जहां प्रारंभ में वे मुख्यतः एक समाज वैज्ञानिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पुस्तक की अंतिम जिल्दों में उन्होंने अपने विषय के विस्तार क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। इस प्रवर्ती अवस्था में वे समाज वैज्ञानिक की अपेक्षा अध्यात्मशास्त्री अधिक दिखाई पड़ते हैं और उनकी प्रमुख अभिरुचि ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में दिखाई पड़ती है जैसे इतिहास में कोई अंतर्निहित अर्थ है या नहीं, अथवा क्या यह किसी लक्ष्य विशेष की ओर पढ़ रहा है इत्यादि, तथा उनका यह भी विश्वास है कि वे इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं, क्योंकि उनका विचार है कि उन्होंने अतीत काल में विभिन्न समाजों के पतन के मूलभूत कारण को समझ लिया है। अतः पुस्तक की प्रारंभिक जिल्दों से ही टाइनबी के लेखन का मुख्य प्रयोजन तथा उनके द्वारा प्रयुक्त कार्यविधि को समझना अधिक उपयुक्त होगा। टाइनबी के इतिहास विषयक चिंतन का प्रमुख सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि इतिहास की विषय वस्तु मानव जाति की कुछ विशिष्ट इकाइयां हैं जिन्हें टाइनबी ने समाज की संज्ञा प्रदान की है। इन विभिन्न समाजों को सभ्यताएं भी कह सकते हैं जो मानव जाति के इतिहास में समय समय पर उद्भूत, विकसित और विनष्ट हुई हैं। सभ्यता ही उनके अनुसार इतिहास अध्ययन की एकमात्र इकाई है और उन्होंने अतीत काल तथा वर्तमान युग की इस प्रकार की 21 सभ्यताओं को छाट निकाला है। विभिन्न सभ्यताओं के उद्भव, विकास तथा पतन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना उनका प्रमुख प्रयोजन है। प्रत्येक समाज या तो आदिम होता है या सभ्य। अधिकांश समाज प्रथम कोटि के अंतर्गत आते हैं और दूसरी कोटि के समाजों की संख्या न्यून होती है। प्रथम कोटि के समाजों की जीवन अवधि प्रायः कम होती है और या तो वे सब समाजों की हिंसा का शिकार बनते हैं अथवा किसी अन्य आदिम समाज द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रत्येक सभ्यता एक स्वतः पर्याप्त इकाई होती है तथा एक विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार टाइनबी के अनुसार सभ्यताएं देश और काल दोनों में परस्पर पृथक और सर्वथा विशिष्ट होती है। जैसे ही कोई सभ्यता अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है, वह मूल सभ्यता नहीं रह जाती और उसके स्थान पर एक नई तथा पृथक सभ्यता का जन्म मानना चाहिए। टाइनबी की इस व्यवस्था में इस विचार का स्थान नहीं है कि कोई सभ्यता अपने कुछ तत्वों को छोड़ते हुए तथा दूसरों से कुछ तत्वों को ग्रहण करते हुए अपना विकास कर सकती है और फिर भी वही मूल सभ्यता रह सकती है। दो सभ्यताओं के पारस्परिक संबंध केवल बाह्य संबंध होते हैं और उनमें एक स्पष्ट पृथकत्व पूर्वापेक्षित रहता है। हमें यह बताने की योग्यता होनी चाहिए कि किस बिंदु विशेष पर एक सभ्यता समाप्त होती है और दूसरी सभ्यता प्रारंभ होती है। हम यह नहीं कह सकते कि कोई सभ्यता दूसरी सभ्यता में रूपांतरित हो सकती है। टाइनबी के सिद्धांत के विवेचन से यह प्रकाशित होता है कि व्यक्ति अथवा समाज की उसकी कल्पना में इसके अंतस्थ पक्ष तथा जो इसके बाहर स्थित हैं उसके बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है। उसके अनुसार अंतस्थ पक्ष तथा बाह्य स्थित वस्तु विशेष एक दूसरे का सर्वथा परिहार करते हैं, किंतु जैसा कि कालिंगवुड ने टाइनबी की अपनी आलोचना में कहा है, यह स्मरणीय है कि इतिहास में मनुष्य की व्यक्तिकता अथवा विशिष्टता जड़ जगत की अन्य वस्तुओं की विशिष्टता से भिन्न होती है। उसमें अपने पर्यावरण को स्वयं में सन्निविष्ट करने की क्षमता होती है। वह इतिहासकार जो अपनी सभ्यता से इतर किसी सभ्यता का अध्ययन करता है, वह उस सभ्यता के मानसिक जीवन को अपने लिए उस सभ्यता के अनुभवों के पुनर्विधायन द्वारा ही समझ सकता है। जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम उस सभ्यता की मानसिक स्मृति की उपलब्धि करते हैं तथा यह हमारे अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। पाश्चात्य सभ्यता ने इसी प्रकार प्राचीन यूनानी सभ्यता से लाभ उठाया है और यूनानी सभ्यता से उपलब्ध ज्ञान को नई दिशाएं प्रदान करते हुए अपना वर्तमान विशिष्ट स्वरूप प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता से केवल बाह्य रूप में नहीं संबंधित है, यह संबंध एक आंतरिक संबंध है। टाइनबी के चिंतन में मुख्य दोष यह है कि उन्होंने सभ्यता के जीवन को केवल जैव जीवन के रूप में समझा है, एक मानसिक जीवन के रूप में नहीं। उनके विचार में इतिहास तथ्यों का भंडार मात्र रह जाता है जिन्हें इतिहासकार देखता है और संग्रहित करता है। टाइनबी ने तथ्यों को इस रूप में लिया है मानो उनको केवल व्यवस्थित करना है तथा इन पूर्व प्राप्त तथ्यों को अपनी व्यवस्था में इधर उधर उपयुक्त स्थान पर बिठा देना है। इन दोषों के बावजूद टाइनबी ने एक परिष्कृत ऐतिहासिक बुद्धि का दर्शन होता है तथा वे प्रायः अपने वास्तविक ऐतिहासिक निर्णयों को अपने सिद्धांतों में निहित दोषपूर्ण सिद्धांतों से विकृत होने देने से बचाने की चेष्टा करते दिखाई पड़ता है। समाप्त।